તારીખ 16/5/1992 શ્રી રવિદ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 282-285 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 123
પૃષ્ઠ 166 વચનામૃત 282 दृष्टि की तुलना में चारित्र का पुरुषार्थ अनंत गुना है, लेकिन उसकी भी मुख्यता नहीं। दृष्टि मैंने सम्यक दृष्टि, स्वरूप दृष्टि, आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि का जो पुरुषार्थ है, बिना पुरुषार्थ वो दृष्टि प्रकट होती नहीं। मिथ्या दृष्टि का दर्शन, दृष्टिपणा का नाश नहीं होता, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। तो जिस पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन आत्मदृष्टि उत्पन्न होती है, उस पुरुषार्थ की तुलना में उसको तोला जावे तो स्वरूप स्थिरता रूप जो चारित्र है, उसका पुरुषार्थ अनंत गुणा है। कितना? 2 गुणा 4 गुणा नहीं है, अनंत गुणा है। चारित्र मैंने ये व्रत ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली, दीक्षा ले ली, वो बात नहीं है। स्वरूप की स्थिरता, उपयोग को स्वरूप में स्थिर रखना, ऐसा जो चारित्र है, सम्यक चारित्र जिसको आत्मचारित्र कहते हैं, उसका पुरुषार्थ सम्यक दर्शन से भी अनंत गुणा है। लेकिन उसकी भी मुख्यता नहीं है, इसकी कोई मुख्यता नहीं है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ की मुख्यता तो नहीं, सम्यक चारित्र का स्वरूप स्थिरता के पुरुषार्थ की भी मुख्यता नहीं। क्यों मुख्यता नहीं? क्योंकि आखिर में वह भी पर्याय है, पर्याय की मुख्यता नहीं है। तो फिर क्या मुख्यता किसके रहनी चाहिए? कि दृष्टि के विषय की मुख्यता में उसकी भी गौणता रहती है। सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी को, मुनि को, सभी को सम्यक दर्शन का विषय बुद्ध जो शुद्ध आत्मा परमात्मा है, उस परमात्मा द्रव्य की मुख्यता के आगे सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ, चारित्र का पुरुषार्थ, सभी की गौणता रहती है। एक भी पर्याय की मुख्यता नहीं होती। छद्मस्त जीव को परिणमन में गौण और मुख्य ऐसा परिणाम अनिवार्य रूप से होता है। केवल ज्ञान होने के बाद 13वें गुण स्थान में परिणाम में मुख्य गौण का परिणमन की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। वहां मुख्य गौण नहीं रहता है। और साधक अवस्था में भी जो प्रमाण ज्ञान रूप परिणमन है, उसमें मुख्य गौण नहीं है। क्या? जो प्रमाण रूप परिणमन है, उसमें मुख्य गौण नहीं है। देखो इसमें है, 33 नंबर का पत्र है ना, उसमें वो बात है। पृष्ठ संख्या 52, पत्रांक 33, और उसमें 3 नंबर का पैराग्राफ, 1, 2, 3 ऐसा 7 तक लिखा है ना, इसमें 3 नंबर का पैराग्राफ है कि त्रिकाली अस्तित्वमयी स्व। क्या? त्रिकाली अस्तित्वमयी स्व मैंने परमात्मा, इस आश्रित परिणमी हुई आंशिक शुद्ध वृत्ति, मैंने शुद्ध पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, और साधक दशा में देवादिक मैंने देव गुरु शास्त्र उसके प्रति आंशिक बाह्य वृत्ति, ये अंतरंग वृत्ति है आत्मा प्रति की, देव गुरु शास्त्र वाली बाह्य वृत्ति, तीनों अंशों का एक ही समय धर्मी को अनुभव होता है। किसमें? प्रमाण ज्ञान में, युगपत। एक साथ मैंने, एक ही समय मैंने युगपत धर्मी को अनुभव होता है, जिसमें मुख्य गुण का प्रश्न नहीं, वो प्रमाण की अपेक्षा से बात है। क्या? वो प्रमाण की अपेक्षा से बात है। और नई की अपेक्षा से देखो तो वृत्ति अपेक्षा छह नंबर का वृत्ति मैंने परिणाम छह नंबर का देखो, वृत्ति अपेक्षा त्रिकाली की मुख्यता वाले धर्मी के, इसकी मुख्यता है स्वभाव की, परमात्मा पद की, इसकी मुख्यता वाले धर्मी के सहजी इस मुख्य आश्रित वृत्ति, मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम की ही मुख्यता रहती है। तो परिणति होगा तो भी उसकी मुख्यता है। क्या? वो पतली लकीर नहीं है, परिणति होते हुए भी इसकी मुख्यता है परिणाम में, चाहे बाह्य अंश में बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति हो, शुभ या अशुभ कुछ भी प्रवृत्ति हो, इसकी मुख्यता धर्मी को होती नहीं है। तो वो बात नए ज्ञान की होगी, अब ये प्रमाण की होगी। प्रमाण में मुख्य गुण होता नहीं है। तो वो जो प्रमाण है, छद्मस्थ का प्रमाण है, वो आगे बढ़ करके केवल ज्ञान प्रमाण हो जाता है। क्या होता है? नए की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, छद्मस्थ अवस्था वाली नए की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, और जो प्रमाण है वो अधूरा प्रमाण है, सम्यक ज्ञान प्रमाण अधूरा प्रमाण है, अल्पज्ञ दशा वाला, वो केवल ज्ञान में सर्व प्रमाण, सर्वथा प्रमाण हो जाता है। क्योंकि ये जो मुख्य वृत्ति है दर्शन ज्ञान चारित्रनी, ये मुख्य वृत्ति ने मुख्य पोतानो परमात्मा है, मुख्य परमात्मा है, तेमनी शैली गजब है। बे वृत्ति है एम कह, एक साधक दशा में एक अंतर्वृत्ति है, एक बाह्य वृत्ति है। तो बाह्य वृत्ति में भले देवगुरु शास्त्र हो के व्यापार धंधो हो, कोई पण हो, धर्मी ने ते गौण छे। मुख्य कयु छे? बे परिणाम में जे अंतर्वृत्ति छे ए मुख्य छे, एमा रस वधारे छे, मुख्य छे एटले एमा रस वधारे छे, उपयोग बार जाय छे एमा एने रस नथी, एने गौण पण जाय छे। तो के ए वृत्ति जे मुख्य जेमा रस वधारे छे एमा मुख्यता कोनी छे? परिणामनी मुख्यता बतावा छता पण परिणाम ने मुख्य कोण छे हर वार कहता जाय छे। लखवानी भी पद्धति छे, એના ઉપરથી નીકળે છે કે આ વાત સાંગો પાંગ આવે છે, શીખડાવેલી વાતમાં એમ ન આવે। શું? એટલે અહીંયા એમ કહે છે કે છદ્મસ્થ અવસ્થા મેં સાધક જીવ કો ભી સમ્યક દર્શન કા જો પુરુષાર્થ હૈ, इससे अनंत गुणा तो चारित्र का पुरुषार्थ स्वरूप स्थिरता का ज्ञानी को होता है, धर्मी को होता है। लेकिन उसकी भी मुख्यता नहीं, लेकिन धर्मात्मा को वो चारित्र की मुख्यता भी नहीं होती, क्योंकि वो पर्याय है। मुख्य वृत्ति वो होती हुई भी वो मुख्य आश्रित वृत्ति है। मुख्य कौन है? जो निश्चय स्वरूप है वो मुख्य है। वो दृष्टि का विषय है कि दृष्टि के विषय की मुख्यता में उसकी भी गुणता रहती है, पर्याय मात्र के गुणता रहती है। कैसे? जैसे वचनामृत के वचनामृत में आता है, मुनिराज क्या कहते हैं कि आनंद तो हमको आता है। क्या? प्रचुर स्वसंवेदन के साथ आनंद है, फिर भी अमृत का घड़ा भीतर में पूरा पूरा महासागर भरा है, उसके आगे तो एक धीमी धार है ऐसा दिखता है। क्या?
धीमी धार।
हमको जिसकी मुख्यता है वो तो अमृत सरोवर है आत्मा, इस अमृत सरोवर में से कुछ झरना बहता है या दूध पड़ता है, लेकिन पूरा पूरा सरोवर में हमको तो डूब जाना है। उसमें से कोई अंश मिले वो हमको मंजूर नहीं है। हम तो पूरा पूरा लेने का अधिकारी है, हम थोड़ा क्यों लेवे। जैसे कोई कहेंगे कि भाई ये आपकी दुकान में आपका 50% आपका भाग है, 50% आपका भाग है, लेकिन हम नफा का जब हवाला डालेंगे तो तुमको तो 40% या 35% का देंगे, बाकी का इनके खाते में डालेंगे। क्यों भाई, मैं 49 नहीं लेने वाला। क्या कहेगा,
49 नहीं लेने वाला।
जब मेरा हिस्सा 50% है, 49% क्यों ले। तो फिर कहेगा भाई ऐसा है, आप तो उदार है, आपको तो उदारता रखनी चाहिए, तुम 50% का हवाला डाल दो, फिर मुझे देना होगा, मैं दूंगा। ये मेरी उदारता का सवाल है, लेकिन मेरा हक डुबाने की बात हुए तो 1% भी मेरा हक डुबाना मैं पसंद करता नहीं हूं। करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मुनिराज कहते हैं कि मेरा अधिकार तो पूरा पूरा अमृत का, अनंत अमृत को भोगने का है, इसमें से थोड़ा आता है क्यों, ये नहीं चले, थोड़ा मुझे नहीं चले। सम्यक दृष्टि से तो आनंद गुणा है, सम्यक दृष्टि को जो आनंद आता है, स्वसंवेदन आता है, इससे तो बहुत है, इधर प्रचुर है, लेकिन केवल ज्ञान हिसाब से तो अनंत महाभागे है। जो 13वें गुण स्थान में स्वसंवेदन होता है, जो मूर्ति में याद देखा जाता है कि तो मूर्ति में ही वो देखा जाता है साधक को कि कितना आनंद स्वसंवेदन है, तो देखते कि हम अपने में तो अनंत में भाग में है, वो नहीं चले, हमारा अधिकार पूरा है, ऐसा लगता है। तो उसको किसी भी पर्याय की मुख्यता होती ही नहीं है, भले ही पर्याय में वो आगे बढ़ता है, पर्याय में विकास को प्राप्त करता है, शुद्धि बढ़ती जाती है, निर्जरा बढ़ती जाती है, फिर भी पूर्णता के लक्ष्य वाले को अधूरा का पुषाण
नहीं है,
ये बात साथ साथ में, इसलिए गौणता रहती है। और दृष्टि का विषय तो शुद्धात्मा केवल ज्ञान का ज्ञान से भी अनंत गुण समृद्ध है, केवल ज्ञान अनंत ज्ञान स्वरूप है, फिर भी इससे भी अनंत गुण ज्ञान समृद्धि एक ज्ञान गुण में है। ऐसे ऐसे अनंत गुण का जो धनी है उसी को परमात्मा कहने में आता है। तो इसके आगे तो सबकी गौणता है, ऐसा परमात्मा स्वरूप के आगे सब सब सबकी सब सब पर्याय की गौणता होती ही है। ये हुआ 282। मुख्य गौण परिणाम नो प्रकार ये ज्ञान मात्र है, बाकी कोई ने नहीं, दर्शन ने नहीं, चारित्र ने नहीं, आनंद ने नहीं, कोई गुण ने नहीं, मुख्य ने गौण ज्ञान नी पर्याय माज था है। गुण भेद थे समझ वो है तो બસ એટલે પછી ક્યાં પ્રશ્ન જ નથી રહેતો, કેમ કે દ્રષ્ટિ છે એ તો એક પોતાના પરમાત્મ પદને સ્વીકારવા સિવાય કોઈના સામુ જોતી નથી। 13મા ગુણ સ્થાને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટે એની સામુ સમ્યક દર્શન ન જોવે, સમ્યક દર્શને પોતાનો પરમાત્મા એવો ગ્રહણ કરી લીધો છે અથવા એને મળી ગયો છે, એને પોતાનો પૂર્ણ પરમાત્મા સર્વગુણ સંપન્ન પરમાત્મા મળી ગયો, હવે કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય 13મા ગુણ સ્થાને આ 4થા ગુણ સ્થાને મળી ગયો, 13મા ગુણ સ્થાને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે, સમ્યક દર્શન ઉસકે સામને ભી દેખને વાલા નહીં હૈ। उसके बगल में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, मुझे क्या है, मेरा धनी जो है वो तो केवल ज्ञान से अनंत गुण है। मुझे छोटी मोटी बात का संग्रह करना नहीं है। जिसका गोडाउन में हीरा और जवेरात का गोडाउन भरा हो, टन बंदी, क्या
टन
बंदी, ये कोई कचरा कूड़ा का कूड़ा का जो ढेर रहता है उकड़ा कैसे मोटा, इसमें से कोई लोहे का भंगार पकड़ने को जाता है,
नहीं
जाएगा, लुटानो भंगार छोड़ो वीण नहीं है, गोडाउन में कदू भरी है, એને એમ થાય કે સોનાનું પણ મારે તો અહીંયા ગોડાઉન નથી રાખવું, હીરાના ગોડાઉન હોય એને સોનાના ગોડાઉન નથી રાખવા, તો પછી એને લોઢાના ગોડાઉન રાખવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી, એમ છે। એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ, તો સમ્યક દ્રષ્ટિરૂપી જે દ્રષ્ટિ, જેનું નામ સમ્યક દ્રષ્ટિ એવું પાડ્યું છે, એ દ્રષ્ટિ તો કેવળ જ્ઞાન અમે જોતી નથી, તો પછી પંચ પરમેશ્વર સામે જોવે હે કે બીજા સિદ્ધ ભગવાન સામે પણ એ જોતી નથી। હજી તો લોકોને સમ્યક દર્શનના સ્વરૂપની ખબર નથી કે સમ્યક દર્શન હોય કેવું, સમ્યક દ્રષ્ટિ કહેવાય કોને, શું નામ સાંભળ્યું છે પણ એનું સ્વરૂપ શું, પણ જૈનમાં કોઈ જૈન તરીકે આવતા નથી, અજૈન તરીકે આવે છે, કેવા જૈન તો થવું પડે એવું છે। આજકાલ તો કોઈ જૈન જન્મતા નથી, સાધુ જન્મે, સાધુ થવું પડે દીક્ષા લઈને, એમ જૈન પણ થવું પડે, જન્મમાં ફનમવાનો એ પ્રશ્ન નથી। ૨૮૩ બહાર સે અપના કોઈ પ્રયોજન હી નહીં, તો બાહ્ય પદાર્થો છે તો સહજી ઉદાસીનતા રહે, ક્યાં ઉદાસીનતા રહે, જ્ઞાની કો બાર મે પ્રયોજન નહીં હૈ, પ્રયોજન હૈ, પ્રયોજન હોવે ઉસકી અપેક્ષા હોતી હૈ, દુકાન પર ઘરાગ આતા હૈ તો ઉસકી અપેક્ષા રહેતી હૈ, ક્યોંકિ પ્રયોજન હૈ કે વો માલ લેગા, લેકિન 10 ગ્રાહક આવે ઉસમેં પતા ચલ જાય કે યે દો તો માલ લેને વાલે નહીં, ભાવ પૂછને કો આયા હૈ, માલ તો બગલ વાલી દુકાન સે લેને વાલા હૈ, તો ઉસકો તો જવાબ ભી દેગા નહીં, ક્યોંકિ પ્રયોજન નહીં હૈ, ક્યો સામને દેખેગા, ઉસકો તો ભાવ ભી બતાને વાલા નહીં હૈ, માલ ભી નહીં બતાયેગા, ભાવ ભી નહીં બતાયેગા, અપેક્ષા સહેજ હો જાતી હૈ, પ્રયોજન નહીં હૈ ઉસકી અપેક્ષા સહેજ હો જાતી હૈ। दृष्टि का स्वरूप तो समझने लायक है, दृष्टि का स्वरूप नहीं समझे तो वो कैसे काम होता है। देखिए अभी विपरीत दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि में क्या है, विपरीत दृष्टि है, वो विपरीत दृष्टि किसको पकड़ती है, कि पर को, तो अभी पर में कौन मुख्य है, राग मुख्य है, जीव को राग का विषय भी नहीं, राग मुख्य है, क्योंकि आज तो लड़का पर राग करता है, कर द्वेष करता है, तो वो तो विषय बदल जाता है उसका, लेकिन राग मुख्य है उसको, तो राग इतना मुख्य है, इतना मुख्य है कि बगल में ही परमात्मा खड़ा है, कहाँ है,
बगल में,
अपने राग के एक समय की राग की पर्याय के पीछे पूरा परमात्मा खड़ा है, नहीं देखते सामने, देखती है क्या उसको, तो एक को देखना का ही उसका एक गुण है, धर्म है, दूसरों को देखे नहीं, राग को देखे तो परमात्मा साक्षात प्रकट है, प्रत्यक्ष है, उसको नहीं देखे, और परमात्मा को पकड़ा, सारी दुनिया को नहीं देखे, केवल ज्ञान को नहीं देखे, अरे अपने आप को नहीं देखे। क्या सम्यक दृष्टि खुद अपने को नहीं देखती, क्योंकि वो भी पर्याय है, ये द्रव्य दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है वो द्रव्य दृष्टि है, पर्याय को देखती नहीं, तो वो अपने आप को नहीं देखती। देखो क्या बात है, फुगानी जी ने एक बात किया है कि जिसके प्रति अधिक प्रेम हो जावे, बेहद प्रेम हो जावे, तो प्रेम करने वाला अपने आप को भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है। जैसे माँ है बच्चे को प्रति कितना प्रेम, बच्चे का जन्म होता है तो कितना प्रेम उसको आता है कि ठंडी में वो बच्चे को ठंडी में नहीं सुलाएगी, अपन ठंडी में सोगी, कोई गरीब होगी तो उसके पास ओढ़ने का पाथरने का पूरा नहीं होगा, क्या होगा, वो अपने प्रतिकूलता सहन करेगी, बच्चे को आराम होना चाहिए, अपने को भूल जाएगी, मुझे कितनी प्रतिकूलता है वो नहीं देखने वाला। और एक बड़ा दृष्टांत लिया है दृष्टि के विषय में, भागवत में गोपांगनाओं का लिया है। गोपांगना जब श्री कृष्णचंद्र को देखती थी तो वो अपने आप को भूल जाती थी, उसको पता ही नहीं रहता था कि मेरा कपड़ा कैसा है, कहाँ ठिकाने पर है कि नहीं है, जो स्त्री सहज लज्जा होती है वो भी छूट जाती थी, ऐसा एक वर्णन आता है भागवत में। क्यों? तो श्री कृष्ण में उतना उसका दृष्टि एकाकार हो जाती थी कि बस वो श्री कृष्ण के सिवा किसी को, अपने आप को नहीं देख सकती थी, दूसरे को तो क्या देखे। ऐसा भीतर में जो कृष्णचंद्र है, श्री कृष्णचंद्र है, उसको दृष्टि देखती है तो वो अपने आप को भूल जाती है। तो वो दृष्टि को समझाने के लिए वहां एक दृष्टांत लिया है, वास्तव में तो वो दृष्टि को समझाने के लिए वो बात किया है। तो श्रीमद जी ने वो बात लिया है सुभाग भाई के साथ, तो सुभाग भाई चौंके, उनकी योग्यता बहुत थी, उन्होंने बात पकड़ी, वो ये कृष्ण और गोपांगना की भागवत वाली बात में तो कोई मर्म ही दूसरा है, रहस्य ही दूसरा है, ये कोई कथा का प्रसंग नहीं है, ये तो भगवान को किस दृष्टि से देखा जाता है ये बात है उसमें। तो प्रश्न करते हैं कि भागवत वाली बात आपने कहां से लिखी है, क्या बोले, पूछा ये भागवत वाली बात आपने कहां से निकली है, आपने कहां से समझी है, तो उन्होंने लिखा है कि वो मेरे आत्मानुभव से मैंने समझी है, मेरे आत्मज्ञान में से वो बात निकली है, अनुभव में से निकली हुई बात है, ऐसा करके स्पष्टीकरण दिया है। दो सौ पच्चीस में वो दृष्टांत दिया ना, बाद में बात की चिट्ठी माया। ભાગવત વાળી વાત અમે આત્મજ્ઞાન થી લખેલી છે, એમણે પૂછાવેલું છે કે તમે આ કયા આધારે લખો છો, ત્યાર પછી કેટલામાં પત્ર એ જરા પ્રશ્ન કર્યો છે કે તમે આવી સરસ વાત પણ ક્યાંથી લખી, તો કે આત્મજ્ઞાન થી લખેલી છે. પેરેગ્રાફમાં વચ્ચે ક્યાંક નાખી દીધી હોય એક આજી લીટી, સીધી પૂરું પુસ્તક ઘરે હોય એમાં તો અંડરલાઈન કરેલી હોય ને એટલે તરત પકડાય. दृष्टि अपने को प्रभु ही देखती है, सम्यक दृष्टि. दृष्टि अपने को प्रभु ही देखती है. कमजोरी से विकल्प आया वर्तमान अवस्था में, कमजोरी से विकल्प आया તો અપની નિંદા ગ્રહાવી હોતી હૈ કે મેં પામર હું. મુનિ પણ એમ કહે કે હું પામર છું ભગવાનની સામે જોઈને. કમજોરી સે વિકલ્પ આયા તો અપની નિંદા ગ્રહાવી હોતી હૈ કે મેં પામર હું. એસા ભી વિકલ્પ આતા હૈ પરંતુ યહ તો ક્ષણ પૂરતા હી વિકલ્પ હૈ. આ ગયા તો આ ગયા, એની પણ ગૌણ તારી છે, એની મુખ્યતા થતી નથી. किसी ज्ञानी को तो दृष्टि बल प्रबल होने से निंदा ग्रह आदि का विकल्प कम भी आता है. कोई ने विशेष आवे, कोई ने ओछो पण आवे, ए बनवा दो छे. पण पर्यायना लक्ष्ये पोतानी पामरतानो ख्याल आवे छे अने जे काई विकल्प राग छे एने निंदा ग्रह पण थाय छे. એ પડખું છે પરિણમનનું સાધક દશામાં. જૈસે જીસકો સુઈ લેને કી આદત હો ગઈ હૈ, સુઈ એટલે ઇન્જેક્શન, ડાયાબિટીસ વાળાને તો રોજ લેવું જ પડે. ઉસકે સુઈ લીએ બિના ચેન નહીં પડતા. અથવા આ ટ્રાન્ક્યુલાઇઝર લે છે ને, ટીકડી લેવાની આદત પડી જાય એટલે એને ચેન પડે. વૈસે જિસકો સુનને આદિ કી આદત હો ગઈ હો. શું આપ મુમુક્ષુઓ ઉપર વાત લખી છે? સંગઢમાં ચર્ચાઓ ચાલતી, સાંભળવાનો ત્યાં રાગ વિશેષ છે એમ દેખાણો એમણે, કે લોકોને સાંભળવાનો રાગ વિશેષ છે, પસંદ નહોતા કરતા. એવું નહીં થવું જોઈએ. પછી સાંભળવાનું ન મળે તો એને ગમે નહીં, કેમ કે એનો ટાઈમ જાય નહીં. નિવૃત્તિ તો હોય, ત્યાં તો કોઈ બીજું કામ ધંધો વેપાર તો છે નહીં, ટાઈમ તો કોઈ એ પદ્ધતિ બરાબર નથી. એમાં થોડો સ્પષ્ટીકરણ આપ્યું છે કૌંસમાં એક શબ્દ મૂકીને, કે સુનને કી આદત ધ્યેય શૂન્ય વૃત્તિ હો ગઈ હો, ઉસકે ઉસકો ઉસકે બિના ચેન નહીં પડતા. જો ધ્યેય હોય અને શ્રવણ મળતું હોય તો એને પોતાના ધ્યેયની પુષ્ટિ થાય છે. પણ જેને ધ્યેય શૂન્ય પ્રવૃત્તિ છે એનો તો એક સાંભળવાની ટેવ થઈ જાય છે, એ કર્ણેન્દ્રિયનો એ વિષય બની જાય છે. જેમ સંગીત એ કર્ણેન્દ્રિયનો વિષય છે, એ વ્યાખ્યાન સુનનાવો કોઈ કર્ણેન્દ્રિય કા વિષય થોડા હે, કર્ણેન્દ્રિય કા વિષય બનાના નહીં ચાહીએ. વૈસે જિસકો સુનને આદિ કી આદત હો ગઈ હો, મને ધ્યેય શૂન્ય વૃત્તિ છે, ઉસકો ઉસકે બિના ચેન નહીં પડતા. લેકિન સુનને આદિ કે ભાવ કા, એટલે રાગ કા, સુનને કા રાગ કા તીવ્ર નિષેધ આય બિના ઉનસે છૂટી નહીં સકતે. એનો પણ નિષેધ આવવો જોઈએ કે ક્યાં સુધી સાંભળવાનું આમના, સાંભળતા સાંભળતા વૃદ્ધ થઈ ગયા, હવે ક્યાં સુધી સાંભળવાનું? એટલું સાંભળવાનો દેશનું વૃત્તિથી તે યોગ્ય નથી. જે કાંઈ સાંભળ્યું, સાંભળીને જે કાંઈ ધાર્યું, એના પરિણમનનું શું, અને પરિણમનની દિશામાં કેટલો પ્રયાસ, કેટલો પુરુષાર્થ, કેટલો પ્રયત્ન, એમ થોડું આગળ ચાલવા માટેનો પોતાનું કાર્ય હોવું જોઈએ અંતરંગમાં. એના બદલે સાંભળ્યા જ કરે, સાંભળ્યા જ કરે, સાંભળ્યા જ કરે, એ પદ્ધતિ આત્માને ગુણકારક થતી નથી, લાભદાયક નહીં. શૂન્ય આદિ રાગ કા ભી તીવ્ર નિષેધ આય બિના ઉનસે છૂટ હી નહીં સકતે. જેવી રીતે આદિમાં પૂજા ભક્તિ, અમારી તો બધે ઉપસ્થિતિ હોય, આખો દિવસ જેટલા કાર્યક્રમ હોય અમે તો બધામાં ઉપસ્થિત રહીએ. ક્યાં કિસકો દિખાના હે ક્યા, મેરી ઉપસ્થિતિ હર જગ્યાએ રહેતી હૈ, એસી ગિનતી કરાની હૈ ક્યા? તો એ તો બાત હો ગઈ લોક સંજ્ઞા સે ધર્મ કરને કી બાત હો ગઈ. એ સમાજમાં મેરી એસી ગિનતી હૈ કે મેરી ઉપસ્થિતિ તો હર જગ્યાએ હોતી, મેં નહીં હોસા નહીં બને, અપને તો સબ જગ્યાએ ઉપસ્થિત હોના હૈ. નિવૃત્તિ કુદરતી હોય શું, તો એનાથી છૂટી શકે નહીં. બાહ્ય વૃત્તિ સે છૂટ શકે નહીં તો અંતરવૃત્તિ મેં આ શકે નહીં. અંતરવૃત્તિ મેં જબ આ સકતે હૈ કે બાહ્ય વૃત્તિ કા નિષેધ આવે તબ. એ લાઈન લિયા હૈ બાત કરને મેં.
હા
આવશે, આગળ આવશે. सुनते ही चोट लगनी चाहिए और सुनते ही प्रयास चालू होना हो जाना चाहिए। और जिस मुमुक्षु जीव को ऐसी लोकोत्तर बात सुनते ही प्रयास चालू होवे वो वर्तमान पात्र है, उसी समय उसकी पात्रता है, पात्रता उसको प्राप्त करनी बाकी नहीं है। पात्रता अच्छी है तब तो वो प्रयास चालू होता है, और जिसको पात्रता नहीं है वो ऐसा रखता है कि अभी तो मैं सुन लूं बाद में प्रयास करूंगा, पहले तो सुन लूं पहले तो जान लूं बाद में प्रयास करूंगा। हाँ, बे बाजू लीधु से कितना केम बेचारे से, पहले तो सुन लूं पहले तो जान लूं फिर बाद में प्रयास करूंगा, तो क्या नहीं अभी सुना अभी प्रयास चालू करो, ये पात्रता। जो पीछे करूंगा इसका सब पीछे ही रहने वाला है, उसका नियत अच्छा नहीं है, हैं? पीछे ही रह जाएगा, क्योंकि इसका नियत अच्छा नहीं है। अभी नहीं करना है मतलब कभी नहीं करना है, जिसको अभी नहीं करना है उसको कभी नहीं करना है। वहां थोड़ा स्पष्टीकरण दिया है, स्वरूप दृष्टि के बल से सभी प्रकार के शुभ भाव और ज्ञानादि का परलक्षी भाव उपयोग का, तो सबका निषेध आए बिना वे शुभ भाव और बहिर्लक्षी प्रभाव से छूट सकते हैं नहीं है, उसका निषेध आना। जितना भी राग है परलक्षी भाव है उसमें कोई लाभ नहीं है, उसमें शांति का लाभ नहीं होता, उसमें केवल अशांति की ही प्राप्ति होती है, ऐसा महसूस होना चाहिए। लगे तो हटे ना, लगे ही नहीं तो फिर आदत बन जाएगी कि भाई सुनते रहो, सुनाने वाला चाहिए, हम तो सुनते रहेंगे, ये आदत अच्छी नहीं है। परिचय में आए दूसरे दूसरे लोगों को, वहां परिचय में आए तो ख्याल तो आ जाए। प्रश्न आवे उस पर से भी पता चलता है कि लोग सुनते हैं, बात तो गुरुदेव के पास परमार्थ की बहुत सुंदर स्पष्ट रूप से आती है, टॉप लेवल की बात जैन दर्शन की है, ये दृष्टि का विषय की बात, फिर भी जो प्रश्न है जो समझ है वो इतनी छिछरी और ऊपर ऊपर की है, तो इसका मतलब कि ये लोग प्रयास करते हैं नहीं है। प्रयास करे तो गहराई में जावे ना, प्रयास करने वाले को तो विषय की गहराई में जाना पड़ता है, वो नहीं जाते तो ऊपर ऊपर चलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सुनने की आदत पड़ गई। गुरुदेव रोज सुनाते थे, और भी विद्वान लोग आते थे उनका भी प्रवचन चलता था, सुबह से शाम तक प्रवृत्ति तो वहाँ वही चले तत्व ज्ञान के स्वंगढ़ में, तो ये तो यहाँ को सुन रहने वाले को सुनने की आदत पड़ गई, अच्छा नहीं, ये बात अच्छी नहीं है, ये ध्यान दिया है, ध्यान खींचा है लोगों, समझे नहीं समझे दूसरी बात है, ध्यान तो खींचा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। 206 है तो आगे आए भागवत वाले बात आत्मज्ञान थी जाने ली छे, बराबर देखू छे बोलो 223 छे, 206 એટલે નો મળ્યો। પારમાર્થિક વિષય માટે હાલ મૂંડ રહેવાનું કારણ પરમાત્માની ઈચ્છા છે, જ્યાં સુધી અસંગ થઈશું નહીં ત્યાં સુધી તેમની ઈચ્છા મળશે નહીં, એટલે પરમિશન નહીં મળે, કેમ કે ભગવાને તો એમ કહ્યું છે કે તું અસંગ થઈને ઉપદેશ આપજે, ગ્રસ્તી મારીને ઉપદેશ આપતો નહીં, ત્યાં સુધી પ્રગટ રીતે માર્ગને કહેશું નહીં, અમે પ્રગટપણે વ્યક્તિગત વાત કરીએ છીએ જુદી વાત છે, જાહેર રીતે મેં ઉપદેશ આપશો નહીં, અને આવો સર્વ મહાત્માઓનો રિવાજ છે, બધા અસંગ થઈને મારો ઉપદેશ આપ્યો છે, અમે તો દિન માત્ર છીએ, અમે તો એ મહાત્માઓ પાસે સાધારણ ગણાઈએ, કે બાકી ભાગવત વાળી વાત છે તો આત્મજ્ઞાનથી જાણેલી છે, એટલે મહામિનામાં લખે છે। આત્મજ્ઞાન, અમને આત્મજ્ઞાન છે, આત્મજ્ઞાનથી અમે ભાગવત વાળી વાત જાણીએ છીએ. એટલે દ્રષ્ટિનો વિષય કેવો હોય, આત્મજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન અને સમ્યક દર્શન એક સાથે પ્રગટે છે. એટલે આત્મજ્ઞાનીને ખબર પડે છે કે સમ્યક દર્શન શું ચીજ છે.
ભગવાન જય પરમ કૃપાળ મહાન ગુરુ દેવ નો જય વિદ્રાધિક.